Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் வார்த்திக காரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஸே ஸ்ரீய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்தாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓ ஓ ஓ கிருஷ்ண யஜுர்வேதிய ஸ்வேதாஸ்வத்தர் உபனிஷத் கே அந்தர்கத் छठे अध्याय में नौवां मंत्र है. न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम् सकारणम् करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः யஸ்தந்துநாவ இவ தந்துவிஹி பிரதானஜஹி சுபாவதோ தேவ ஏகா ஸ்வமாப்ருணோத் சனோ தத்யாத் ப்ரஹ்மாப்யயம் ஏகோ தேவ சர்வபூதேஷு கூடஹ சர்வவ்யாபி சர்வபூதாந்தராத்மா கர்மாத்யக்ஷஹ சர்வபூதாதிவாஸஹ சாக்ஷி சேதா கேவலோ நிர்குணஶ்ச ஏகோ வசே நிஷ்க்ரியாணாம் பஹூனாம் ஏகம் வீஜம் பஹுதாயஃ கரோதி தமாத்மஸ்தம் யேனு பஸ்யந்தி தீராஸ் தேஷாம் சுகம் சாஸ்வதம் நேதரேஷாம். உபனிஷத் பரமாத்மா கே பாரே மே தடஸ்த லக்ஷண கே மாத்யம் சே வர்ணன் கர் ரஹே. ந தஸ்ய கஷ்சித் பதிரஸ்தி லோகே. कल बता रहे थे पति पति नाम वह पतियों का भी पति है. आज ये कह रहे हैं कि उसका कोई पति नहीं है. पति शब्द का अर्थ संकेत कर दिया गया था कल. पति शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला, पातीति पति. संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी का पालन पोषण वही करता है, इसलिए वह सबका पति है, सबका पालन पोषण करता है वो, इसलिए उसका एक और नाम हो गया है विश्वंबर. सारे विश्व के प्राणियों को स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणवंत प्राणी हैं, चाहे वह स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे वह स्वेदज हो चाहे अंडज हो चाहे पिंडज हो, चाहे वह पाताल लोक के रहने वाले हों चाहे दिव्य देव लोक के रहने वाले हों चाहे ब्रह्मलोक के रहने वाले हों, समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाला वो अकेला है, वो अकेला है. इसलिए कहा कि पतिम पति नाम। सामान्यतया तो हम ये मानते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तो हमारे भरण पोषण करने वाले हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, प्रत्यक्षतया वही दिखते हैं और वही हमारे भरण पोषण करते हैं। लेकिन वास्तव में उसके हृदय में भी वही परमात्मा बैठकर उनको निमित्त बनाकर हमारा भरण पोषण करा रहा है। इसलिए परमात्मा इस जगत में जो कुछ भी कर्म करता है वो स्वयं अपने करणों से कर्म नहीं करता है, अपने साधनों से कर्म नहीं करता है। परमात्मा अन्य के जो करण हैं, अन्य के जो साधन हैं कर्म करने के, उन्हीं साधनों का प्रयोग करके और वह जगत का कर्ता होता है। इसलिए दुनिया में एक ही एक व्यक्ति है जो सब कुछ करते हुए भी वह आगे नहीं आता है। और संसार के जीवों का स्वभाव है कि न करते हुए भी आगे आता है। इसलिए तो कहा कबीर ने, तो कोई खैरात बांट रहे थे तो बांटने वाला व्यक्ति हमेशा सिर नीचा करता हुआ बांट रहा था। तो कबीर पहुंचे, वो भी कुछ मांगने के लिए पहुंचे होंगे, सन्यासी तो थे ही, गृहस्थ सन्यासी थे वो। जब देने लगे देने वाला तो सिर नीचा किया हुआ था, तो कबीर ने पूछा कि क्या बात है, तुम सिर नीचा क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया, देने वाला कोई और है और लोग कहते हैं कि ये दे रहा है, बिना मतलब भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रांति से कहते हैं कि फलाना व्यक्ति दे रहा है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि फलाना व्यक्ति दे रहा है तो मुझे शर्म आती है, देने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। तो वही पति पति नाम, परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, पालन करता है, रक्षा करता है। पति शब्द का दो अर्थ किया गया है, एक तो पाति इति पति, पतनात् पाति इति पति, गिरने से बचावे, और उसी अर्थ में पिता शब्द बना हुआ है। और दूसरी बात है कि भरण पोषण करके उसका पालन पोषण करता है, इसलिए पति। तो उसको भी तो कोई भरण पोषण करता होगा। जैसे अब हम पैदा हुए तो हमारे मां बाप हमारे भरण पोषण करते रहे, तो बोले कि तुम्हारे मां बाप जब पैदा हुए थे उनका भरण पोषण किसने किया? बोले उनके मां बाप ने। तो उनके मां बाप जब पैदा हुए थे तो उनका भरण पोषण किसने किया? तो बोले उनके मां बाप ने। अरे सभी का भरण पोषण किसने किया? तो जवाब देने वाले ये सामान्य जवाब देंगे कि सभी के अपने अपने मां बाप ने। वेदांत दर्शन उपनिषद और हमारा अध्यात्म दर्शन ये कहता है कि सभी का मां बाप तो वही एक है, क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे परमात्मा तुम्ही ही मेरी मां हो और तुम्ही ही मेरे पिता हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे जन्म देने वाली मां का वहां अपमान किया गया हो और तुम्हारे जन्म देने वाले पिता का वहां अपमान किया गया हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा को माता पिता मानकर तुम्हारी जो माता पिता हैं उनका तिरस्कार किया गया हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा तुम्हारे पिता का भी वह पिता है और मां का भी मां है, यानी मां को मां बनाने वाला ही वही है, पिता को पिता बनाने वाला वही है। तो मां के हृदय में वही अभिव्यक्त होकर मातृत्व निष्पादन कर रहा है और पिता के हृदय में वही अभिव्यक्त होकर पितृत्व निष्पन्न कर रहा है। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला व्यक्ति उस परमात्मा को माता और पिता के रूप में वंदना करता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। हमारे जो बंधु बांधव हैं वो सब वो भी वही है, वही हमारा बंधु है, वही हमारा बंधु बांधव है। ये प्रार्थना का रहस्य यही है, क्योंकि जो हमारा मित्र है उस मित्र के हृदय में वही अभिव्यक्त होकर मित्रत्व संपादन कर रहा है, जिस समय उसकी अभिव्यक्ति विशेष अभिव्यक्ति अवरुद्ध हो जाती है तो फिर मित्र मित्र नहीं रहता। जब उस बंधु में विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती है, रुक जाता है, तब बंधु बंधु नहीं रहता है। तब कहा ये मंत्र के द्वारा प्रार्थना की गई परमात्मा को कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तमेव विद्या द्रविणम तुमेव। क्योंकि जो हमको विद्या प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, ये ज्ञान भी उसी के रूप में प्राप्त है, उसी के द्वारा प्राप्त है, क्योंकि वह विद्या का अधिपति है, स्वामी है। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरा, ब्रह्मणो अधिपतिर, ब्रह्माणो अधिपतिर, ब्रह्मा शिवोम अस्तु सदा शिवोम। वो तो सभी विद्या का अधिपति है, इसलिए द्रविणम तमेव। कहां तक नाम गिनाया जाए, तो अंत में कह दिया तमेव सर्वम मम देव देव। संसार में जो कुछ भी है, हे देवादिदेव, तुम्ही ही हो, तुम्ही ही मेरे हृदय में अहम के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हो, तुम्ही अन्य पदार्थों में इदम के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हो। अहम ये प्रत्यय का जो आधार है वह भी वो तुम हो, और इदम ये प्रत्यय का आधार भी तुम हो। प्रत्यय माने ज्ञान, यह के रूप में जो हम जानते हैं उस यह का आधार भी वही परमात्मा है। अपने लिए हम कहते हैं मैं, और दूसरों के लिए हम कहते हैं यह। तो यह और मैं, अहम और इदम, जो कुछ भी जगत में प्रतीति हो रही है, उस प्रतीति का मूल में वही परमात्मा विद्यमान होने के कारण त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए वह विश्वंभर है, सबका वरण पोषण करता है। इस बात पर विश्वास करने वाले संत अपने सहसा अपने हृदय से ऐसी अभिव्यक्ति निकाला करते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते। हम तो विष्णु सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, गणेश सहस्र नाम आदि पाठ करते हैं, और पाठ करते समय ये सहज में पाठ कर जाते हैं कि परमात्मा विश्वंभर है, लेकिन हजारों बार उसके विश्वंभर के रूप में जप करने पर भी उस विश्वंभर के प्रति पूरा भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। हम तो डरते रहते हैं, क्या पता कल को खाने को मिले कि नहीं मिले, यदि कुछ नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, कुछ करना पड़ेगा, खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कल। तो फिर विष्णु सहस्रनाम जो पाठ कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? वो विश्वंभर है, इसीलिए तुम उसकी चिंता छोड़ दो। प्राण रक्षा और भरण पोषण की तो तुम चिंता छोड़ देना भाई। महाराष्ट्र के शिवाजी, छत्रपति शिवाजी है, राजर्षि छत्रपति शिवाजी, कहते एक बार बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा महाराष्ट्र में। महात्माओं ने दृष्टांत उनकी जीवनी में लिखी है। इतने लंबे समय तक दुर्भिक्ष हुआ, अकाल पड़ गया, तो लोगों को दाना पानी के हाहाकार हो गए, तरस रहे थे। तो उनके पास अपना राजकीय जो कोष था वो खोल दिया प्रजाओं के लिए। मंत्री को आदेश दे दिया कि मेरे जो राजकीय कोष है तो सब प्रजाओं के लिए खोल दो, जहां वो जैसे भी हो सबको पानी और अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक ये दुर्भिक्ष की निवृत्ति, अकाल की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक इस प्रजाओं की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा है, इनकी रक्षा हर हालत में होनी चाहिए। राजाज्ञा थी, मंत्रियों ने वैसी व्यवस्था की चारों तरफ। तो एक बार समर्थ रामदास गुरु, उन्होंने पूछ लिया, तुम्हारे राज्य कैसे चल रहा है, राज्य की व्यवस्था कैसी चल रही है, प्रजा कैसे हैं? तो कहा कि महाराज बहुत दुर्भिक्ष चल रहा है आजकल, अकाल पड़ रही है। तो फिर प्रजाओं की रक्षा कैसे हो रही है? बोले महाराज हम हैं ना, हम हैं तो हमारे वजह से सब कुछ हमने व्यवस्था मिला रखी है, सबको अन्न जल की व्यवस्था ठीक से हो रही है, हम बचा रहे हैं उनको। शिवाजी को लगा, समर्थ रामदास जी को लगा, ये भी मूर्ख ही है, इसकी इस मूर्खता को भी इलाज करनी चाहिए। अरे चल बेटा थोड़ा घूमने चलते हैं, लेके चले गए। वो तो समर्थ थे, इसीलिए एक बड़ा सा कोई पत्थर पड़ा हुआ था, कहा कि इसमें जरा जोर से मारो। तो शिवाजी ने उस पत्थर को जोर से मारा तो वह दो दो हिस्से में बट गया वो पत्थर। आश्चर्य की बात है कि उसके अंदर एक कीड़ा बिलबिला रहा था और उसको पानी भी उसी बगल में ही था, उसी में वो कीड़ा बिलबिला रहा था। ए शिवा, इस पत्थर के अंदर की इस कीड़े को अन्न जल की व्यवस्था तो तुमने ही की होगी ना? उसको आश्चर्य लगा कि नहीं महाराज, हमारी मंत्रियों की दृष्टि यहां तक कहां पहुंचने वाली है। वो तो मनुष्यों को व्यवस्था किया होगा, दो चार गाय भैंसों को व्यवस्था कर दिया होगा, उसके अलावा और संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सबकी व्यवस्था करना तो कहां संभव है। तो बोले इतने वर्षों तक अकाल पड़ी है और इसको तुमने जब अन्न पानी नहीं दिया तो कैसे बचा हुआ है? तो बोले ये तो पता नहीं भाई, भगवान की कृपा है। तो फिर तू क्यों ये कहता है कि मैंने सारी व्यवस्था मिला रखी है? और जिस परमात्मा ने इस पत्थर के अंदर के कीड़े को पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था मिलाई रखी, मिला रखे और आज तक प्राण की रक्षा की है, वही सारे प्राणियों की रक्षा वही करता है। तो कामो काम, मैंने किया मैंने किया मत कहा। शिवाजी की आंख खुल गई, ओहो आप सही कह रहे महाराज, मैं भी बिना मतलब अहंकार कर रहा हूं, अभिमान कर रहा हूं। तो उस दिन से उनको राजपाट के प्रति मोह और ममता खत्म हो गया, अभिमान खत्म हो गया। और कहते हैं कि सब राज छोड़ दिया और उनके गुरु के चरण में अर्पण कर दिया। बाद में फिर समर्थ जी ने कहा कि बेटा तूने संपत्ति तो राज्य तो मुझे दिया है, अपने आप को तूने सुरक्षित रखा है, और जब अपने आप को तूने सुरक्षित रखा है तो यही तुम्हारा अभिमान, यही तुम्हारा घमंड बाद में जाकर तुम्हें फिर परेशान करेगा। और तो जहां भी जाएगा ये कहता रहेगा कि मैंने सारा राज्य सन्यासी को दे दिया है और ये घमंड ये अहंकार तुझे शांति से रहने नहीं देगा। तब क्या करेगा? बोले ठीक है, हम आत्मनिवेदन कर देते हैं, अपने आप को भी तुम्हारे चरण में डाल देते हैं, सब खत्म हो गया। तो बोले ठीक है, तेरे राज्य को भी हम स्वीकार करते हैं और तुझे भी हम स्वीकार करते हैं। तब ये सब हमारी वस्तु हो गए, इसके मालिक अब हम हो गए, और हम मालिक होने के कारण तुम्हें आज्ञा देते हैं कि हमारी तरफ से राज्य की व्यवस्था कर। महात्माओं का ठीक है, राज्य भी सुरक्षित और अहंकार भी चला गया। देखो महात्माओं की युक्ति कैसी होती। तब से महाराष्ट्र में भगवा झंडा आज तक विद्यमान है, सन्यासी का राज्य है ये प्रतीक के लिए है। लेकिन आजकल तो झंडा भगवा तो लगा दिया ये कहने के लिए कि राज्य सन्यासी का है, और राज्य कर रहे भोगुआ ने, सब भोगने वालों ने, झंडा है भगवा और शासक है भोगुआ, देखो। तब उनको लगा शिवाजी को, गोहो विश्वंभर का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंभर हो गीयते। मधुसूदन सरस्वती कहते उनके भी वृद्ध माता पिता थे, अकेले थे, उनकी सेवा करना ही उनका कर्तव्य था। एक दिन बैठे बैठे उनको ये लगा कि मैं अचानक मर गया तो इनकी रक्षा कौन करेगा, इनका देखभाल कौन करेगा, उनको ये लगा। और जब ये चिंता से वो चिंतित थे कि कदाचित मैं मर गया इनसे पहले तो फिर इनकी दुर्दशा होगी, इनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, आज तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ये चिंतन ये विचार चल ही रहा था, इस सोच में पड़े हुए थे तो अचानक उनको ये लगा कि एक छिपकली छत में से गिरी और ऐसा लगा कि अब वो मर जाएगी, न उसको कोई जल देने वाला है वहां, न कोई दाना पानी देने वाला है, उसके मुख में पानी डालने वाला कौन है, कोई नहीं, ये मर जाएगी अब। इतनी में ही दो मक्खियां उड़ते हुए लड़ते हुए उसके मुख में चले गए और उसने मुख बंद किया। थोड़ी देर के बाद जीवो जीवस्य भोजनम, छिपकली तो चल पड़ी। तब उनको ये लगा कि अरे रे रे रे, जाको राखे साई है मार सके ना कोई, ये प्रारब्ध है, एक को मारकर दूसरे को बचाना, दूसरे को मारकर तीसरे को बचाना, ये तो ईश्वर की व्यवस्था है कि किसको पहले प्राथमिकता देनी है, किसको बचाना है। जीवो जीवस्य भोजनम, ईश्वर की लीला थी। वो देखते हुए उनको लगा संतों को कि अरे रे रे, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभर हो गीयते। परमात्मा जब विश्वंभर है तो सबका भरण पोषण वही करता है, तो मैं खामो खाऊ क्यों चिंता करूं। नोचित अर्वक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत, व्यतिरेक युक्ति लगाया। व्यतिरेक ये कि यदि परमात्मा विश्वंभर न होता, मां के गर्भ से बाहर आने से पहले उस बच्चे के सारे पाचन शक्ति क्रिया निष्क्रिय हुई होती है, और ऐसे जो सद्योजात बालक हैं वो बाहर के कोई भी अन्न जल को पचाने की क्षमता वाले नहीं रहते हैं।